सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सयलोवसगणिवः संवरणेनेव जस्स फिटन्ति पाशस्सतसणमिं पाषणयो अम्परुवेमुः। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 13वीं पुस्तक जो पंचम खंड वर्गणाखंड, उसमें अभी हम कर्म अनुयोग द्वार की बात देख रहे हैं। पृष्ठ संख्या है 71। 35-36 का हमने गाथा का अर्थ किया था, अभी आज 37 नंबर की गाथा भी हम पढ़ने जा रहे हैं। ये ध्यान का विषय अपना चल रहा है, तो उसमें दो प्रकार के ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और धर्म ध्यान जो है वो ध्येय के अपेक्षा से, ध्येय जो अलग अलग है विषय की अपेक्षा से, उसके चार प्रकार है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान। उसमें आज्ञा किसको कहना, किसकी आज्ञा पालना, गुरु की क्या किसकी आज्ञा, तो कहते जिनेंद्र भगवान की आज्ञा। तो आज्ञा किसे कहना, तो आगम सिद्धांत और जिन वचन जो है, तो आगम में तो ये मोक्ष मार्ग की ही बात आती है ना, अन्य तो कुछ बात आती नहीं सांसारिक प्रयोजन वाली, तो इसको कहते हैं आज्ञा। और वो आज्ञा ने अपना स्वरूप समझकर अपने आत्मा की अनुभूति कर लेना, स्थिरता कर लेना, यही आज्ञा है। तो आज्ञा से वो आज्ञा विचय नाम धर्म ध्यान, आज्ञा के ऊपर विचार करना, विचय ने उसका विचार चलेगा। अब हम 37 नंबर को पढ़ेंगे। अणुवगय पराणु कह परायणा जम जिणा जय पवरा जियराय दोष मोहा न अन्न हावा इणो तेन। यतः जग में श्रेष्ठ जिन भगवान जो उनको नहीं प्राप्त हुए, ऐसे अन्य जीवों का भी अनुग्रह करने में तत्पर रहते। क्या कहते हैं, जिनेंद्र भगवान अन्य मतियों जो उनकी तो कल्पित देव देवताएं हैं, तो क्या कहते हैं उनके भक्तों के प्रति वो अनुग्रह करते हैं, और जो भक्त नहीं है जो दुष्ट है उनका दमन करते हैं, उनको मारते हैं जो कुछ है। तो जिनेंद्र भगवान कैसे है कि जो उनके प्रति प्राप्त नहीं हुए है उनका भी अनुग्रह करते हैं, और उन्होंने राग द्वेष और मोह पर विजय प्राप्त कर ली है। ऊपर लिखे जिय राय दोष मोह, यानी जित राग दोष मोह, राग मोह और द्वेष को जिन्होंने जित, यानी जीत लिया है, प्राप्त कर लिया है विजय, इसलिए वे अन्यथा वादी नहीं हो सकते। ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा क्यों पालनी है उसकी बात यहाँ चल रही है। अन्यथावादी यानी वस्तु स्वरूप से विपरीत कथन करने वाले नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें कोई राग द्वेष और मोह नहीं है। 38 नंबर, हम देखते हैं ना कि कोई झूठ क्यों बोलता है, तो या तो अज्ञानवश या तो कषायवश, तो उनमें तो दोनों ही नहीं है, सर्वज्ञ है और पूर्ण वितराग है, इसलिए अन्यथावादी नहीं हो सकते। 38 नंबर, पंचत्यकाय छज्जीवकाये काल दौव मन्नेय आणागे जे भावे आणा विचयेण विचिनादि। पांच अस्थिकाय, छह जीव निकाय, निकाय कहो या काय कहो, छह जीव निकाय ने षटकायिक जीव, अभी तो हमें मालूम है ना षटकाय, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। कौन से है षटकाय? पांच स्थावर काय और एक त्रसकाय, ये मिलकर षटकाय जीव कहलाते हैं। पांच अस्थिकाय द्रव्य तो पता है हमें, काल द्रव्य इसको अलग गिनाया क्योंकि छह द्रव्य तो पांच अस्थिकाय में आ गए, काल जो है वो अस्थिकाय नहीं है, एक प्रदेश ही, इसके लिए उसको अलग से गिनाया। तथा इसी प्रकार आज्ञाग्राह्य, आज्ञाग्राह्य ने आज्ञा ग्रहण करने योग्य, अन्य जितने पदार्थ है उनका यह आज्ञा विषय ध्यान के द्वारा चिंतन करता है। हम कहते ना षड द्रव्य, सात तत्व कहो, नौ पदार्थ कहो, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप जो है, मोक्ष मार्ग कैसा है, स्वपर वेद विज्ञान कैसे करना, ये जो कुछ बातें सारी जो है ये भगवान ने बताई हुई बातें ना, हम दूसरी भाषा में कहेंगे तो सात प्रयोजन भूत तत्व जो है, तो उसके बारे में जो चिंतन करा ध्यान के द्वारा उसका चिंतन करना, उसको कहते हैं आज्ञा विषय धर्म ध्यान। विषय का अर्थ होता है चिंतन करना। अभी आगे पृष्ठ पर 72 पर आएंगे हम। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योगों के निमित्त से कर्म उत्पन्न होते हैं। कर्म उत्पन्न होते का अर्थ होता है कारमान वर्गणा कर्म रूप से परिणमित होती है, और कर्मों के निमित्त से जाति जरा मरण और वेदना उत्पन्न होते हैं। यानी जीव के भावों के निमित्त से कारमान वर्गणा कर्म रूप होती है। अब ये जो कर्म रूप हुए हैं तो उसका उदय आता है, तो यहाँ जीव में क्या होता है, जाति जरा मरण और वेदना उत्पन्न होते हैं। ये सारा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो उसके बारे में सोचना, ऐसा चिंतन करना और उनसे अपाय का चिंतन करना, अपाय यानी उसमें से छूटना। यानी कर्मों का चिंतन क्यों करना, तो कर्म किस तरह से बनते और उसमें से छूटने का क्या उपाय है, क्योंकि मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योगों के निमित्त से कर्म बनते हैं, और कर्म के उदय में विशिष्ट ये निमित्त बनता है। इस बात पर विचार करके उसमें से छूटने का जो उपाय है उसको कहते हैं अपाय। उस अपाय का चिंतन करना अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान है। देखो हम कहते हैं ये कर्म को नहीं जानना चाहिए, उसकी कुछ जरूरत नहीं है, पर अभी अभी हमने देखा कि ध्यान के लिए कुछ चिंतन के लिए विषय भी होगा ना, आलंबन होगा, तो इस बात पर विचार करना वो धर्म ध्यान हो जाएगा।
यहाँ क्लियर कट लिखा है कि मिथ्यात्व भी कर्म का कारण है करके,
वो तो है
नहीं, वो तो है,
स्वयं कषाय और योग,
फिर भी
हाँ इस विषय में गाथाएं हैं। अभी 39 नंबर हम पढ़ेंगे। रागद्दोष कषाया सवादि क्रिया सुवट्टमाणानम इह परलोगावाये जाए जो वज्ज परिवच्ची। पाप का त्याग करने वाला साधु राग, द्वेष, कषाय और आश्रव आदि क्रियाओं में विद्यमान जीवों के इहलोक और परलोक के अपाय का चिंतन करते हैं, करे क्या कहते हैं, पाप का त्याग करने वाला साधु। यानी कौन से इसकी बात चल रही ना, हाँ, राग, द्वेष, कषाय और आश्रव आदि क्रियाओं में विद्यमान जीवों के इहलोक और परलोक से अपाय का चिंतन करें। ये जो अभी हमने अपाय की बात की ना, अपाय विचय धर्म ध्यान, उसकी बात है यहाँ पर। अब 40 नंबर। कल्याण पावहे जे उवाए विचनादि जिनमयम वेच्च विचिनादि वावाए जीवाणम जे सुहा असुहा। अथवा जिनमत को प्राप्त कर कल्याण करने वाले जो उपाय है उनका चिंतन करता है, अथवा जीवों के जो शुभाशुभ भाव होते हैं उनसे अपाय का चिंतन करता है। 41 नंबर। इसमें कुछ नहीं समझ में आवे तो पूछना हो, ये तो सरल है, क्या रह गया, हाँ हमने 40 पढ़ा अभी। क्या रह गया अभी वो पढ़ा नहीं है। हाँ 40 हो गए अभी। प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश के भेद से चार प्रकार के शुभाशुभ कर्मों के विपाक का चिंतन करना विपाक विचय नाम का तीसरा धर्म ध्यान है। क्या कहते हैं, जैसे हम बंध की बात करते हैं, कर्म का बंध होता है तो उसमें हम चार प्रकार से बताते हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो बंधने के बाद सत्ता में पड़ा रहता है और चारों ही प्रकार का उदय होगा। जिस प्रकृति का उदय है उसको हम कहेंगे प्रकृति का उदय है। एक समय में जितने परमाणु उदय रूप होते हैं उसको कहेंगे प्रदेश उदय है। कितने समयों के एक साथ उदय होते तो एक समय का एक साथ में उदय में आता है तो उसको स्थिति उदय कहेंगे। और अनुभाग का उदय उस समय जो उदय के समय में अभी उसमें किस रूप से उसका उदय हो रहा है, कितनी डिग्री में हम कहेंगे, कितने उसके अविभाग प्रतिच्छेदों के या देशघाती है कि सर्वघाती है कि उसमें वो अनंत गुणाहीन होकर उदय में आया है, जैसा है उसका उदय रूप अनुभाग उसको कहेंगे अनुभाग का उदय। तो ये आठों ही कर्मों का उदय चलता है तो उसमें तो कौन से शुभ है कौन से अशुभ है उसका क्या फल है। देखो फिर इसको पढ़ेंगे, प्रकृति स्थिति प्रदेश और अनुभाग इन चार भागों में विभक्त है। किसकी बात चल रही है, कर्म के विपाक। 41 पढ़ा नहीं मैंने, हाँ डायरेक्ट नीचे पढ़ा। अच्छा 41 गाथा पढ़ेंगे, पयरिठ दीपदेशा अनुभाग भिन्नम सुहासुह विहत्तम जोगाणुभाग जिनीय कम विभागम विचिन्ते जो जनीय है वो जनित जनीय। देखो जो प्रकृति स्थिति प्रदेश और अनुभाग इन चार भागों में विभक्त है, ये कर्म का विपाक कैसा है उसकी बात है। एक तो ये चार प्रकार से उसके हम विभाजन कर सकते हैं, और कैसा है जो शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है, अलग अलग प्रकृतियां अलग अलग शुभाशुभ में डिवाइड होती है। तथा जो योग और अनुभाग अर्थात कषाय से उत्पन्न हुआ है, यानी वो हुआ क्यों है, तो योग और कषाय से, कषाय को यहाँ अनुभाग का जोगाणुभाग जनीय है ना, ये जीव के जो भाव है उनका अनुभाग समझना, कषाय और अनु यानी कषाय को ही यहाँ अनुभाग का। ऐसे कर्म के विपाक का चिंतन करें। अभी 42 नंबर, ये समझ में आया। पहले आज्ञा विषय में तो जिनेंद्र भगवान ने जो छह द्रव्य है, सात तत्व आदि जो अनेक बातें बताई उस पर चिंतन करना। फिर अपाय विषय में कर्म का बंध होता है मिथ्यात्वादी भावों से और उसके उदय में ऐसी ऐसी बातें बनती है और उसका अपाय का यानी उसमें से छूटने का उसके उपाय के ऊपर चिंतन करें। अब यहाँ जो शुभाशुभ कर्म जो है उसके उदय में कैसे कैसे फल मिलते हैं उस पर विचार करना, उसको कहेंगे विपाक विचय। विपाक का ही अर्थ होता है उसका अनुभाग का उदय, उसको विपाक कहते हैं। अब 42 नंबर, एगानेग भवगयम् जीवाणम् पुण्य पावकम् फलम् उदोदीरण कंकम बंधे मोक्षम च विचिनादि। तीनों लोकों के ऊपर कहाँ गया, वही तो मैं एक और अनेक की बात चल रही है, क्या गया, जीवों को जो एक और अनेक भव में पुण्य और पाप कर्म का फल प्राप्त होता है। क्यों ऐसा कहा एक और अनेक भव में, जो हम भाव करते हैं और कर्म बनते हैं तो उसी भव में उसका फल मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं, एक भव में मिलता है और अनेक भवों तक उसका उदय भी चलता रहेगा। तो पुण्य के भी फल और पाप के भी फल मिलते रहते हैं उसका। तथा उदय उदीर्णा संक्रमण बंध और मोक्ष का चिंतन करता है। तो पुण्य पाप के फल का चिंतन, ये विपाक उदय की बात चल रही है ना, हाँ विपाक विचय, और कर्मों की जो अवस्थाएं होती है उसका उदय होता है, उदीर्णा होती है, उदीर्णा यानी उदय, तो जो क्रम से उदय में आते उसको उदय कहेंगे, और अभी जो भविष्य में पड़े हैं परंतु विशिष्ट परिणामों के कारण वो उदय रूप कर्मों के साथ होकर जल्दी उदय में आते उसको उदीर्णा कहते हैं। संक्रमण अन्य प्रकृति रूप परिणमित होने को संक्रमण कहते हैं, बंध तो पता है, और मोक्ष यानी वो फिर निकल जाना, खिर जाना या पूरा छूट जाना, उसको मोक्ष कहेंगे, उसका चिंतन करता है। तो ये तो तीन हो गए हमारे, अभी चौथा संस्थान विचय जो है उसकी बात है। उसके पहले ये हम दो लाइन पढ़ेंगे, चौथा होगा आज्ञा विचय, नहीं अपाय विचय, फिर विपाक विचय। देखो अभी उसके पहले गाथा के पहले यहाँ लिखा है उसको पढ़ेंगे अभी हम। तीनों लोकों के संस्थान, ये तीन लोक की रचना उसमें है ना, संस्थान उसके आकार, उसका कितना है, क्षेत्र कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है, ये सब उसमें आता है, यानी उसका आकार कैसा है, पूर्व पश्चिम उसकी लेंथ, ये ब्रेथ कितनी है, ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये सब संस्थान में आ जाएगा। उसका प्रमाण और आयु आदि का चिंतन करना, अलग अलग जो स्वर्गों की आयु कहाँ, कौन से स्वर्ग के में कितनी होती है, नरकों में कितनी है, मनुष्य तिरियंचों की कितनी है, ये भोग भूमि कर्म भूमि, ये जो जितने सारे जो हम देखते हैं तीन लोक में आदि का चिंतन करना संस्थान विचय नाम का चौथा धर्म ध्यान है। इस विषय में गाथाएं 43, 44, 45। देखो ये कहते थे ना, हम जब भी हमने वो जैन भूगोल का किया था शिविर, ये क्यों पढ़ना, हम तो अपना आत्मा का कल्याण करना है, ये तो जैन भूगोल की अपनी हुई थी ना, हाँ तीन लोक की रचना, तभी तो बात हुई थी, और पहले भी हमने किसी को बोला था कि चलो आप वहां चले, हमें तो आत्मा का करना है, अभी हम तो बूढ़े हो गए इस उम्र में, ये भूगोल पढ़ के हम क्या करेंगे। तो ये मुनियों को तो ये आज्ञा, ये संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है, उस पर चिंतन होते होते, तो क्योंकि आत्मा को ही मुख्य किया है, और अभी राग द्वेष रहित होकर कौन सी चीजों को जानेगा जी। लोग कहते आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, खाली उसको ध्यान नहीं कहा, देखो यहाँ ध्यान के विषय तो अलग अलग है, पहले मैं स्वयं इससे भिन्न हूँ ये जीव ने अनुभूति कर ली है, या अभी पहले तो श्रद्धा में ले लिया, अभी जब तक अनुभूति नहीं जिसको हुए तो भी, तो फिर वो किस बात पर विचार करेगा, क्योंकि अपना मन तो भटकने से ही रहा ना, दिन भर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अब इन विषयों पर विचार करेगा जो जिनेन्द्र भगवान ने बताई हुई बातें, तो उसको हम ये चिंतन करते करते फिर उसका शुद्ध उपयोग भी होता होगा बीच बीच में। आप कुछ कहना चाहते हैं?
हाँ, यानी हम किसी को कहें कि भाई हमारे यहाँ भी हम भूगोल का शिविर लेने वाले हैं, आप जरूर आना, अभी हम हमारा आत्मा का करेंगे या तुम्हारा भूगोल को सुनेंगे, ऐसा अपोज किया था भाई, आत्मा का कर ले भाई, जिनका द्रव्यान योग का अभ्यास है,
जो अभ्यास
उनको ही हमने बुलाया था।
हम तो कुछ ही क्यों, जिसका कुछ भी अभ्यास नहीं ऐसे लोगों को तो बुलाते ही नहीं है,
और हम बार बार बोलते हैं ना, भूगोल के पीछे मत लगना, आप पहले सिद्धांत तो समझो, ये तो हमने यहाँ कितनी बार बताया, लोग पूछते हैं कि दो सूर्य है कैसा प्रूव कर सकते हो, ये है वो है, अरे 17 चीज पूछते हैं, पृथ्वी गोल है क्या, चपटी है, हमको फोन भी आए थे क्या आप इसके बारे में बोलने वाले हो, कहा कि जो शास्त्र में लिखा है उसके बारे में बोलेंगे
हमने। तो पहले सर्वज्ञ का स्वरूप निश्चित करो, हमने सर्वज्ञ का स्वरूप जान लिया तो आपको शंका उठेगी ही नहीं ये कैसा है और क्या है।
यानी आपको शायद याद होगा हमने कई बार बोला था कि भूगोल के बारे में अभी कुछ मत बोलना, अभी तो हम तत्वों को पहले समझते हैं, तत्व हमारे चलो ठीक है।
सबसे पहले द्रव्यानुयोग, परंतु हमने अभी द्रव्यानुयोग हमने अभी 20-20 साल से 10-10 साल से पढ़ा है, तो ऐसे जीवों को अन्य अन्य ग्रंथों का भी अभ्यास करना कार्यकारी होता है, उसमें से कुछ वो फालतू गया ऐसी बात नहीं होती। हाँ, क्योंकि सर्वज्ञ की उसमें बिल्कुल ठोस ऐसी प्रतीति हो जाती है। अभी हम गाथा पढ़ेंगे। 43 से लेकर तीन गाथा एक साथ पढ़ेंगे। जिन देसी आई लखन संठाना सन विहान माणाइम उपादठ दिभंगादिपज्जया जेयदौवाणम पंचथिकायमयम लोगमणायिणिहणम जिणखादम नामादिभेय विहियम तिविह महो लोगभागादिम खिदिवलय दीवसायरण यरविवाण भवनादिसंठानम ओमादिपरिठानम नियम लोगठिदि विहानम। इसका अर्थ करते हैं, जिन देव के द्वारा कहे गए छह द्रव्यों के लक्षण, संस्थान, रहने का स्थान, ये छह द्रव्यों के अंदर आ गए ना। जहाँ द्रव्यों की बात आती है तो द्रव्य कहाँ रहते हैं, तो रहने का स्थान, उनके भेद प्रमाण तथा उनकी उत्पाद स्थिति और व्यय आदि रूप पर्यायों की बात करनी क्या नहीं करनी है। यहाँ तो पर्यायों का चिंतन भी करना कहाँ है। लोगों को तो पर्याय की बात उठाते हैं तो एलर्जी हो जाती है। पर्याय की बात मत करो, पर्याय से भिन्न हम त्रिकाली ध्रुव भगवान। अरे पर वो त्रिकाली ध्रुव भगवान जो है ज्ञायक कहते हैं उसको, तो वो जानेगा कि नहीं सबको। उनकी उत्पाद स्थिति और व्यय आदि रूप पर्यायों का, पांच अस्थिकायमय अनादि निधन, नामादि अनेक भेद रूप और अधोलोक आदि भाग रूप से तीन प्रकार के लोक का। देखो, तीन प्रकार के लोक के लिए क्या किया कहा उन्होंने, वो तीन प्रकार का लोक कैसा है, पांच अस्थि कायमय है, अनादि निधन है, अनादि अनंत है, किसी ने बनाया नहीं उसको लोक को, नामादि अनेक भेद रूप, अधोलोक मध्यलोक ऊर्ध्वलोक ऐसे नाम से तीन भेद है उसके, ये लिखा है ना आगे, नाम भी अलग अलग है और अधोलोक आदि भाग रूप से भी तीन प्रकार का है, तथा पृथ्वी वलय द्वीप सागर नगर विमान भवन आदि के संस्थान का, एवं आकाश में प्रतिष्ठान नियत और लोक स्थिति आदि भेद का चिंतन करे। यानी ये त्रिलोय पन्नति कहो या त्रिलोकसार कहो या जो तीन लोक की जो रचना है उसके बारे में जो और उसमें स्थित द्रव्यों के बारे में चिंतन होगा उसको यहाँ संस्थान विषय धर्म ध्यान कहा है। हाँ, सभी ग्रंथों में तत्वार सूत्र में भी है ना, भूगोल आदि जो बात है तीन लोक की रचना है तत्वार सूत्र में भी है। वो तो वही तो विषय होगा ना, त्रिलोक में तो यही विषय आने वाला है। हाँ, क्योंकि पहले जीव द्रव्य अजीव द्रव्य निश्चित किया तो वो रहते कहाँ है और किस किस रूप से विद्यमान है। पृथ्वी वलय वलय ने गोलाकार, ऊपर क्या लिखा है, खिदि वलय दीव सायर, द्वीप को अलग लिया है ना और फिर पृथ्वी वलय को अलग लिया। पृथ्वी वलय मेरे ख्याल से पूरा ये मध्यलोक गोलाकार है उसको कहा होगा। अभी आगे की 40, 47, 48 तीन गाथाएं। वोग लक्ष्मण आई निहणम अत्थरम सरी दादो जीवम रूविम कारिम भोइंच सयस्सकम्मस तस्सयस्सकम्म जनियम जम्मा इजलम कसाय पायालम वसन सयसावमीनम मोहावत्तम महाभीमम नाणमय कर्णहारम वरचारित्तमय महापोयम संसार सागर मणो रपारम हस्वहं विचिन्तेजो। जीव उपयोग लक्षण वाला है, अनादि निधन है, शरीर से भिन्न है, अरूपी है, तथा अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता है। ऐसे उस जीव के कर्म से उत्पन्न हुआ जन्म मरण आदि यही जल है। अभी संसार रूपी सागर का वर्णन कर रहे हैं, तो कर्म से उत्पन्न जन्म मरण को ही जल कहा। कषाय यही पाताल है, ये पातालों की बात आ गई। सैकड़ों व्यसन रूपी छोटे मत्स्य है, मोह रूपी आवर्त है। आवर्त किसको कहते हैं पता है? वो भवरा होता है ना, आवर्त घूमता है उसमें। हाँ उसमें क्या वमड़, वमड़ क्या कहते हैं? नहीं भवर, भवरा, भवरा कहते मराठी में, वही होगा। आवर्त है ना वो गोल घूमना, उसको आवर्त कहते हैं। तो ये पानी की बात है ना, समुद्र में, उसमें कोई क्योंकि वो जो हम समुद्र में बड़े बड़े ऐसे होते हैं, तो उसमें कोई फंस जाए जहाज, तो बड़े बड़े जहाज भी उसमें अंदर ऐसे चक्कर लगा के नीचे तक चले जाते, जिसको कहते रसा तलाला पहुंचने। हाँ समय सार में है ना, वो ममल जब तक नहीं छूटे और जहाज को नहीं छोड़े, ऐसा आया था। हाँ तो मोह रूपी आवर्त है और अत्यंत भयंकर है, ज्ञान रूपी कर्णधार है और उत्कृष्ट चारित्रमय महापोत है। ऐसे हाँ इस अशुभ और अनादि अनंत संसार का चिंतन करे। महापोत ने महादोयम, महादोयम, महापोयम, महादोयम, महादोयम, महादोपोयम, महापोयम, क्या कहते शीड, अच्छा महापोत, महादोयम, महापोयम, ऐसे दो तीन अर्थ है उसमें। ये कर्णधार और वो चारित्र में महापोत है, या जहाज भी होगा, जहाज होगा या उसका वो शीर होगा। पोत क्या है, महापोत क्या है पता नहीं। हाँ पोत हो, वही वो कहते हैं, वो उसके जो होते हैं ना, हाँ कर्णधार है, चारित्र में महापोत, वो वही कहते हैं, वो उसको शीर कहते हैं। शीर यानी वो कपड़ा होता है, उसकी बात है। यानी ऐसे भयानक संसार में रूपी समुद्र में से पार करने के लिए ज्ञान रूपी कर्णधार है और वो उत्कृष्ट चारित्रमय है, वही महापोत है। ऐसे इस अशुभ और अनादि अनंत संसार का चिंतन करे। देखो ये संसार का चिंतन, देह का चिंतन, ऐसे अलग अलग उस पर विचार करता रहता है जी। नहीं 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 नहीं, उत्कृष्ट चारित्र किसको कहेंगे, उसी की बात चल रही। इसमें से संसार सागर में से छूटने के लिए घूमने के लिए उत्कृष्ट चारित्र कैसे कहेंगे, उसमें से पार होने के लिए है।
देखो जैसे जहाज होता है, नहीं नहीं वो नहीं, वो नहीं, पोत कर्म नहीं। यहाँ बात ऐसी है कि संसार जहाज है, सुनना अभी बोलो मत, संसार रूपी जो सागर है उसमें से बाहर निकलने के लिए जो जहाज है, वो जहाज में जो सीढ़ होता है, मतलब जो आप गुजराती में बोले छठ, तो उसमें चलाने वाला कोई जो होगा वो उत्कृष्ट कर्णधार यानी नावाड़ी जिसको बोलते हैं, नाविक। हाँ जी, कि ये बोलते कैप्टन कर्णधार दिया है ना इधर, तो इस तरह से वो उसमें से निकल आएगा। और ये निकलने के लिए कर्णधार तो ज्ञान है और उसके साथ में चारित्र होना चाहिए, और ये दोनों से हम इस तरह से शुभ और अशुभ जो संसार की बातें हैं उसको हम जाने, उसके बारे में चिंतन करें, ये बात यहाँ बताई है।
अभी 49 नंबर की गाथा। किं बहु सोऽसौं चिय जीवादिपयत्थ वित्थरो वेयं सौवर्णय समूहमयं जायज्जो समयस भावम्। वो जीवादि करना ऊपर जो जो वादी दिख रहा है ना, जरा स्पष्ट है वहाँ। देखो इसका अर्थ देखते हैं, बहुत कहने से क्या लाभ। ये अमृतचंद्राचार्य भी बार बार कहते हैं अलम बहु विस्तरे न अति जल्पे न, ऐसा कहते हैं। बहुत कहने से क्या लाभ, यह जितना जीवादि पदार्थों का विस्तार कहा है उस सबसे युक्त और सर्व नए समूहमय समय सद्भाव का ध्यान करे। ये समय सद्भाव क्या है? तो निज आत्मा में सर्व नए समूह क्यों लिया? देखो देखो ऐसा इसका अर्थ लेना, यह जितना जीवादि पदार्थों का विस्तार कहा है, किसने कहा है, किसमें कहा है? जिनवाणी में है ना, तो शास्त्र को समय कहते हैं। तो ये जो विस्तार कहा है उससे युक्त, जो कहा है उससे युक्त आत्मा होगा कि जिनवाणी होगी? तो द्रव्य श्रुति जो कहा है जिसको समय कहते हैं। और कैसा है वो समय? समय ने अभी हम जिनेंद्र भगवान का आगम कहेंगे। ये आगम एक तो कैसे कि जिसमें जीवादि पदार्थों का विस्तार से कथन किया है, और यह आगम कैसा है? सर्व नय समूहमय है, क्योंकि हम कहते ना वो स्यादवादमयी है। तो स्याद का अर्थ ही है विशिष्ट नय का जो कथन है, अपेक्षित कथन। तो सर्व नयों के समूह वाली ऐसी जो जिनवाणी है, ऐसा जो समय है, समय सद्भाव कहा, यानी उसमें बताई हुई जो बातें हैं उसका ध्यान करें। हाँ बस बस स्वाध्याय करे तो वही उस पर चिंतन करे। स्वाध्याय तो हम पढ़ने को सुनने को कहेंगे, फिर उस पर जो चिंतन चलेगा बार बार। लोग कहते हैं हमको किसका चिंतन करना, कैसे करना ध्यान, तो उसका जो पढ़ा है उसका ध्यान करो, ये ध्यान करे। देखो ये जो हम पढ़ा है उसको बार बार सोचना, इसको ध्यान कहा है। और हम तो ध्यान किसको कहते हैं, ये कुछ नहीं विकल्प मुझे, कुछ जानना नहीं उसको ध्यान समझते, ऐसी बात नहीं है। इसको जानते रहेंगे तो उसमें विशुद्धि बढ़ेगी, और फिर भी उस वो विषय छूट कर भी आत्मा का शुद्ध उपयोग वो चलता रहेगा। अब 50 नंबर। झाणो वर में विमुनि निच्छमण इच्छादि चिंतना परमो होइ सुभाविय चित्तो धम्म छाणे जिहव पूवम। ऐसा ध्यान करके उसके अंत में मुनि निरंतर अनित्यादि भावनाओं के चिंतन में तत्पर होता है। यह अनित्यादि भावना कभी सुने हैं? हाँ, बारह भावना कहो, अनुप्रेक्षा कहो। तो ऐसे ध्यान करके फिर अनित्यादि भावनाओं के चिंतन में तत्पर रहते हैं, जिससे वह पहले के समान धर्म ध्यान में सुभावित चित्त होता है। सुभावित, अच्छी तरह से जिसकी भावना की जाती है उसको सुभावित चित्त कहा। हाँ, ये मुनियों की अपेक्षा यहाँ सब बातें की है। फिर भी यथा योग्य नीचे के गुणस्थानों के जीवों के भी होगा, मुख्यतः मुनियों की अपेक्षा बात, क्योंकि ये ध्यान ही मुनियों की अपेक्षा से यहाँ वर्णन किया है। परंतु जो चौथे वाला है, अभी मिथ्यात्व अवस्था में ध्यान नहीं कहा तो उसको करना कि नहीं करना? तो जब उस विचार करेगा और निर्विकल्प अवस्था प्राप्त होगी तब उसको ध्यान कहेंगे। भले पहले उसको ध्यान मत नाम दो, परंतु विधि तो यही होगी ना, चिंतन तो यही होगा। जो हम शास्त्र में पढ़ते हैं उसके बारे में बार बार चिंतन होगा। शंका, यदि समस्त समय सद्भाव यानी पूरा ही द्रव्य श्रुत धर्म ध्यान का ही विषय है तो शुक्ल ध्यान का कोई विषय शेष नहीं रहता। आपने तो सब कुछ कवर कर दिया धर्म ध्यान में, तो शुक्ल ध्यान वाले को कोई विषय ही नहीं बचा, ऐसा कहते हैं। और हम तो क्या, हम तो आत्मा का ध्यान करना है, समझ में आया क्या बात है? और यहाँ तो मुनियों की भी अपेक्षा, ये तो विषय होगा धर्म, ये जो सारे जो विषय बताए हैं शास्त्र में बताए हुए, ये सारे ही ध्यान के विषय है। आत्मा में तो प्रतीति होती है कि ये मैं हूं, अब फिर वो किस बात पर एकाग्र होगा उसके ये विषय बताए हैं। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि दोनों ध्यानों में विषय की अपेक्षा कोई भेद नहीं है। शुक्ल ध्यान के भी ये भेद विषय हो जाएंगे। शंका, यदि ऐसा है तो दोनों ध्यानों में एकत्व अर्थात अभेद अभद हुआ है, अभेद प्राप्त होता है। शंकाकार कहता है दोनों के विषय एक है तो दोनों ही ध्यान एक ही हो गए ना, धर्म और शुक्ल दो नाम क्यों दिए उसके? क्योंकि अभी वो ध्यान किसको कहते हैं उसके लिए बड़ी परिभाषा बता रहे शंकाकार, क्योंकि दंश मशक यानी काटने वाले जो कोई कीड़े हैं मच्छर है वो सबको उसको दंश मशक, दंश मशक सिंह भेड़िया व्याघ्र श्वापद और भल्ले ने रीछ द्वारा भक्षण किया गया भी, यानी किसी हिंस्रश पशु के द्वारा भक्षण होने पर भी, वसूला द्वारा छीला गया भी, यानी किसी शस्त्र के द्वारा या कुछ वसूला, इन्हें क्या कहते वस्तारा, क्या कहते वसूला, किसको कहते रंधा, हो सकता है ऐसे कुछ, हाँ, क्योंकि छीलने वाले कोई जो औजार है उसके द्वारा छीला गया भी, करोतों द्वारा फाड़ा गया भी, किसी ने करवत चलाई तो भी, दावानल के शिखा मुह द्वारा ग्रसा गया भी। दावानल किसको कहते हैं? ये अग्नि जो है ना, हाँ, वोल्केनो, हाँ, दावानल, वो वोल्केनो जंगल में, वनवा, वनवा जिसको कहते हैं, पानी में आता है उसका नाम है, समुद्र में भी होता है ना दावन, नहीं नहीं नहीं, समुद्र में आग लगती है, आग लगती है, बड़े बड़े ऐसे कायम लहरने में भी ऐसे होते, अभी तो हमें पता है वो सारे बॉम्बे हाई वगैरह निकले ना, तो ऐसे नेचुरल भी समुद्रों में बड़े बड़े ऐसे अग्नि के चलते रहते हैं। उसको वड़वानल किसको कहते फिर? वड़वानल, दावानल, वड़वानल है वो पानी का, बहुत बड़े बड़े होते हैं बेटे वड़वानल, जैसे पर्वत होते हैं बड़े बड़े वैसे वो अग्नि के ही शिखाएं होती है वहां पर। अभी हम उसका साइंटिफिक बता सकते हैं ना, क्योंकि हो सकता है कोई पेट्रोल का नीचे से उसमें वो डायरेक्ट उसको सप्लाई होता है तो वो जलता रहता है कितने, हम देखते ना, ये तो जो समुद्र में ही है ना अभी गैस की जो कुएं सब बने हैं और उसमें जो आग लगती है तो महीनों तक चलती रहती है। तो दावा नल के शिखा मुख द्वारा, शिखा मुख है ना वो जो शिखा है, अग्नि शिखा है उसके द्वारा ग्रसा गया भी, तो वो दावानल में कैसे पहुंचेंगे? हाँ, कोई देव होते ना उनके वैरी देव पूर्व भव के, तो उठा के पटक देते वहां पर। शीतवात और आतप द्वारा बाधा गया भी और सैकड़ों करोड़ अप्सराओं द्वारा ललित किया गया भी, जो जिस अवस्था में ध्येय से चलायमान नहीं होता वह जीव की अवस्था ध्यान कहलाती है। ये शंकाकार की शंका चल रही है अभी तक। इस प्रकार यह स्थिर भाव दोनों ध्यानों में समान है, अन्यथा ध्यान रूप परिणाम की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अब इस शंका का समाधान करते हैं। दावा न लेने फॉरेस्ट फायर, हाँ, और वो वड़वा न लेने वो पानी वाला समुद्र का। अभी हम आगे पढ़ेंगे समाधान। इस शंका के समाधान में कहते हैं, यह बात सत्य है कि इन दोनों प्रकार के स्वरूपों की अपेक्षा दोनों ही ध्यानों में कोई भेद नहीं है, किंतु इतनी विशेषता है कि अब ये दोनों ध्यानों में क्या अंतर है उसको कहेंगे कि धर्म ध्यान एक वस्तु में स्तोक काल तक रहता है, यानी उसका वो विषय बदल जाता है जल्दी जल्दी, क्योंकि कषाय सहित परिणाम का गर्भगृह के भीतर स्थित दीपक के समान चिरकाल तक अवस्थान नहीं बन सकता। ये उसका ध्यान कैसा है, कषाय सहित है, तो कषाय सहित होगा तो क्या होगा, ये ध्यान के विषय चेंज होते रहेंगे, एक विषय से दूसरे विषय पर चला जाएगा, तो एक ही विषय पर स्थिर चित्त होना उसको ध्यान कहा है। अब वो जल्दी पलटेगा, और शुक्ल ध्यान में एक ही विषय तक लंबे काल तक रहेगा। हाँ हाँ बहुत है। अभी उसके लिए दृष्टांत क्या गया, गर्भगृह के भीतर स्थित दीपक, दीपक जो है गर्भगृह ने कोई भुयार में हम नीचे जमीन के अंदर तलघर में ले जाए, ऐसे कि जहाँ कोई पवन नहीं है, नहीं कुछ वायु के लिए कोई इंतजाम नहीं है, तो थोड़ी देर में वो दीपक बुझ जाएगा। तो
देखो यहाँ ऐसा कहते हैं, जैसे गर्भगृह यानी सुनो सुनो सुनो, यानी रूम बंद रहेगी, गर्भगृह यानी घर, यानी जो ऐसा जहाँ हम कहते हैं वहां पर जो दीप चलाएंगे हवा नहीं आएगी तो बिल्कुल स्थिर रहेगा, और जो हवा में आएगी तो लकपकेगा, इधर उधर घूमेगा, ऐसा यह जीव कषाय के साथ है इसलिए चिरकाल अवस्थित नहीं रह पाता है, ये बताना चाहते हैं। लिखा ना गर्भगृह के भीतर स्थित दीपक के समान उसका चिरकाल तक अवस्थान नहीं बनता, क्योंकि वो कषाय सहित है,
यानी एक ही समान उसका परिणाम नहीं रह सकता।
हाँ। बराबर।
शंका, धर्म ध्यान कषाय सहित जीवों के ही होता है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, असंयत सम्य दृष्टि। देखो कहां से शुरुआत किया धर्म ध्यान की। संयता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, क्षपक और उपशामक, अपूर्व करण संयत, क्षपक और उपशामक अनिवृत्ति करण संयत, तथा क्षपक और उपशामक सूक्ष्म सांप्राय संयत जीवों के धर्म ध्यान की प्रवृत्ति होती है, ऐसा जिनदेव का उपदेश है, इससे जाना जाता है कि धर्म ध्यान कषाय सहित जीवों के होता है। हम शुक्ल ध्यान की पहला पाया कहते ना आठवें से, ये दहा दसवें तक बताए, हम तो सातवें तक बताते थे, देखेंगे हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं। अब यहाँ कहते हैं क्योंकि वो कषाय सहित, ये उसके पीछे उन्होंने विशेषण लगाया है, परंतु शुक्ल ध्यान के एक पदार्थ में स्थित रहने का काल धर्म ध्यान के अवस्थान काल से संख्यात गुणा है, क्योंकि वीतराग परिणाम मणि की शिखा के समान बहुत काल के द्वारा भी चलायमान नहीं होता। अभी यहाँ जैसे यहाँ सिमिली बताइए ना, क्या कहा, देखो यहाँ कैसी दृष्टांत दिया, मणि की शिखा बहुत काल के द्वारा भी चलायमान नहीं होती, वैसे वितराग परिणाम बहुत काल के द्वारा भी चलायमान नहीं होता। अभी ऐसे वहाँ पर अगर हम सिमिली करेंगे, नहीं नहीं वहाँ पर जैसे कषाय वालों के क्या उन्होंने दृष्टांत दिया, गर्भगृह के भीतर स्थित दीपक चिरकाल तक अवस्थान नहीं बनता, वहाँ इसी अपेक्षा से उसको वर्णन करो ना। गर्भकाल गर्भगृह में स्थित दीपक चिरकाल तक अवस्थान नहीं होता, वैसे कषाय सहित वालों का चिरकाल अवस्थान नहीं होता। और यहाँ जो उदाहरण दिया था मणि की शिखा, वो तो चलायमान होती ही नहीं। मणि की शिखा ने रत्नों की जो ज्योति है उसका जो प्रकाश है, चिरकाल ने वो बहुत काल तक। शंका, उपशांत कषाय गुणस्थान में पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान का अवस्थान अंतर्मूर्त काल ही पाया जाता है। देखो इन्होंने पृथक्त्व वितर्क वो ग्यारहवें वाले को बताया है, हम आठवें से बताते हैं ना, और फिर बारहवें में वो एकत्व वितर्क हो जाता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि वितरकता का अभाव होने से उसका विनाश बन जाता है। देखो इनके यहाँ अभी इस पुस्तक की अपेक्षा से क्या है, ये पृथक्त्व वितर्क विचार कहाँ पर बतलाया, ग्यारहवें में। तो शंकाकार की शंका है, आप अन्य तो छोटे काल में बदल जाता है ऐसा कहा, तो यहाँ जो पृथक्त्व वितर्क विचार नाम का जो धर्म ध्यान का है, सॉरी शुक्ल ध्यान कहा है, वो भी अंतर्मूर्त में पलट जाता है, तो आप उसको चिरकाल रहता है ऐसा क्यों कहते हो? तो वहां जब तक वितरकता है तब तक है, वितरकता चली गई इसलिए उसका अभाव हो गया, क्योंकि वितरकता के अभाव होने से उसका विनाश बन जाता है। शंका, उपशांत कषाय के ध्यान का अर्थ से अर्थांतर में गमन देखा जाता है? समाधान, नहीं, क्योंकि अर्थांतर में गमन होने पर भी एक विचार से दूसरे विचार में गमन नहीं होने से ध्यान का विनाश नहीं होता। शंका, अर्थांतर है, अर्थ है द्रव्य पदार्थ, हाँ, फिर भी उसके विचार से दूसरे विचार में गमन नहीं होता, यानी वो ध्यान का विनाश नहीं होता ऐसा कहना चाहते। जैसे ये धर्म ध्यान में पलटते रहता है, उसका काल कम है, परंतु यहाँ अर्थ का दूसरा अर्थ होने पर भी वो विचार नहीं पलटता। शंका, वितरकता के रहते हुए भी क्षीण कषाय में होने वाले एकत्व वितर्क अविचार ध्यान का विनाश देखा जाता है। अभी इसकी दूसरी शंका, ग्यारहवें के लिए क्या कहा, वो क्या करे, वितरकता का विनाश हुआ और वो दसवें में आया तो सराग हुआ, कषाय शुरू हुआ, इसलिए उस अंतर्मूर्त काल में उसका विनाश हो गया। अब कहते हैं बारहवें वाला, उसकी क्या पोजीशन है, बारहवें वाले की जो वितरकता है तेरहवें में जाने पर वितरकता रही क्या, घटी क्या, बढ़ी क्या, हुआ वही की वही है ना, पूर्ण वितराग है, तो वहां तो वितरकता का नाश नहीं हुआ था, तो पृथक नहीं, अभी एकत्व है ना, एकत्व वितर्क वाले का उसका ध्यान का नाश क्यों हुआ, ये प्रश्न है। तेरवे वाले को भी होना चाहिए था, उसका समाधान, नहीं, क्योंकि आवरण का अभाव होने से क्या हुआ, वहां पर पूर्ण वितरकता के साथ एक अंतर्मूर्त तक ध्यान चला ना, उसका आत्मा को जानते रहा ऐसा नहीं कहा, आत्मा को तो आत्मा में जान ही लिया उसने बहुत काल से, अभी वो किसी एक विषय का ध्यान कर रहा था पूर्ण वितरकता के साथ, अंतर्मूर्त में क्या बात बन गई, ज्ञानावरण का ही अभाव हो गया। तो अभाव होने से क्या हुआ, केवली जिनका उपयोग अशेष द्रव्य पर्यायों में उपयुक्त तो होने लगता है। पहले क्या होता था बारहवें गुणस्थान में, किसी एक द्रव्य गुण पर्याय मान लेते, किसी एक पर भी उसका ध्यान टिका था, उपयोग में क्या था, कोई एक विषय था, बिल्कुल स्थिरचित्त उसको पूर्ण वितरकता के सहित जान रहा था। तो जानते जानते क्या हुआ, केवल ज्ञान हुआ और संपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय वो उपयोग में आने लगे। एक विषय क्यों छूटा, अभी सभी विषय आने लगे ना, पहले उपयोग एक किसी द्रव्य को या किसी को लिया था उसने पकड़कर और फिर उसी को स्थिरचित्त वो जान रहा था, अब क्या हुआ, संपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय तीनों काल की वो झलकने लगी उनके ज्ञान में, इसलिए कहते उपयोग जो है जिनेंद्र भगवान का उपयोग अशेष अशेष यानी कुछ छूटे बिना सभी द्रव्य पर्याय में उपयुक्त तो होने लगा, यानी उपयोग रूप ज्ञान में वो सब जानने में आ रहे हैं। इसलिए एक द्रव्य में या एक पर्याय में अवस्थान का अभाव हो, क्या हुआ पहले ग्यारहवें वाले को क्या बताया था, किसी एक विषय को जानते थे परंतु वितरकता का अभाव होने से वो ध्यान छूट गया, ऐसा हम कहेंगे। बारहवें में क्या पोजीशन हुई, किसी एक विषय का ध्यान चल रहा था, उपयोग में किसी एक द्रव्य को या उसके कुछ पर्याय को लिया था, अब उस पर उसको जानते जानते पूर्ण वितराग तो हुआ है, अंतर्मूर्त में तो केवल ज्ञान हो गया, अभी वो एक विषय छूटकर सभी विषय उसके उपयोग रूप ज्ञान में आ गए, तो अभी किसको छोड़ना किसको ग्रहण करना कुछ नहीं, वो सभी एक रूप, तो एक विषय का जानना छूटा, जानना नहीं छूटा, एक ही विषय जानने में आ रहा था उपयोग में, अभी संपूर्ण विषय जानने में आ रहे, इसलिए वो पहले वाला ध्यान यहां नहीं कहा। फिर इसको पढ़ते, आवरण का अभाव होने से केवली जिनका उपयोग अशेष द्रव्य पर्याय में उपयुक्त होने लगता है, इसलिए एक द्रव्य में या एक पर्याय में अवस्थान का अभाव देखकर उस ध्यान का अभाव कहा है। उस ध्यान का अभाव हमने पहले पढ़ा भी है, उसे अभी ध्यान का फल कहते हैं। एक ही विषय को स्थिर एकाग्रता से जान रहा था, उसमें क्या हुआ केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ध्यान का फल प्राप्त हुआ। इसलिए सकषाय और अकषाय रूप स्वामी के भेद से ये धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में क्या अंतर है उसको पूछा था, तथा अचिरकाल और चिरकाल तक अवस्थित रहने के कारण इन दोनों ध्यानों का भेद सिद्ध है, ये दो ध्यानों में फर्क क्या है, तो धर्म ध्यान वो सकषाय वाला को है और शुक्ल ध्यान अकषाय वाले को है। धर्म ध्यान वो अचिरकाल है, छोटा काल है उसका, और शुक्ल ध्यान है वो चिरकाल है। शंका, कषाय सहित तीन गुण स्थानों के काल से चूंकि उपशांत कषाय का काल संख्यात गुणाहीन है, इसलिए वितराग ध्यान का अवस्थान काल संख्यात गुणा है, यह बात नहीं बनती। ये कौन से तीन गुणस्थानों की बात है, हाँ आठवा नौवा और दसवा, आठवें से नौवा छोटा है, नौवे से दसवा छोटा है, और ये तीनों ही गुणस्थान के काल से उपशांत कषाय का काल छोटा है, तो ऊपर अभी बात आई थी पहले ही लाइन में इसी पृष्ठ पर 75 पृष्ठ पर क्या लिखा था, शुक्ल ध्यान के एक पदार्थ में स्थित रहने का काल धर्म ध्यान के अवस्थान काल से संख्यात गुणा है। इसलिए अभी शंकाकार ने पूछा है, तो उसने उसमें एक बात को गौर नहीं किया था, उसने पूरा ध्यान का काल ही लिया था उसमें, अब उसके उत्तर में समाधान में ये बात सिद्ध होती, देखो नहीं, क्योंकि एक पदार्थ में कितने काल तक अवस्थान होता है, उसके तो पदार्थ बदलते रहते ना ध्येय वाले, ध्यान तो उसका चल रहा है परंतु वहां तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में फास्ट फास्ट चेंज होता रहता है। इस बात को देखकर उक्त बात कही, इस विषय में गाथाएं। देखो द्रव्यानुयोग के द्वारा हम कुछ अभिप्राय बना लेते हैं ना, उसके लिए बहुत कार्यकारी है ध्यान क्या होता है और कैसे, हम तो अभी तक ऐसा ही मानते थे, हमने तो ऐसा कि आठवें से शुक्ल ध्यान होता है और बारहवें के कुछ काल बीतने पर वो एकत्व वाला चुलू होता है, यह अलग अभ्यास, वो तो बाद में तेरहवें उसकी तो अभी बात नहीं की, कुछ नहीं अभी सूक्ष्म की बात ही नहीं करी, हाँ तेरहवें में कुछ है ही नहीं, ध्यान ही नहीं उसके अंत में है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती जो है, जो जब वो योग को सूक्ष्म किया जाएगा वो तो तेरहवें के अंत में होगा। अभी 51 नंबर, हाँ ये इसी अपेक्षा से जैन कोश में भी लिखा है, ये चौथे से ग्यारहवें तक बताया, ग्यारहवें में वो शुक्ल ध्यान बताया, दसवें तक सकषाय वाले को कहा ना धर्म ध्यान। अब आगे 51 नंबर की बात पढ़ेंगे। अंतो मुहूर्तमेतम चिंतावत्थाणमेघवत्थुम्मि छदुमत्थाणं झाणं जोगणिरोहो जिणाणं तु। एक वस्तु में अंतर्मुहूर्त काल तक चिंता का अवस्थान होना छद्मस्थों का ध्यान है। ये छद्मस्थ और सर्वज्ञ की बात अलग बताई। देखो क्या कहते हैं, एक वस्तु में अंतर्मुहूर्त काल तक चिंता का अवस्थान होना, उसी को जानते रहना छद्मस्थों का ध्यान है, और योग निरोध जिन भगवान का ध्यान है। जिनेंद्र भगवान का ध्यान किसको कहा, जो अभी सूक्ष्म क्रिया वगैरह हम कहेंगे, योग का निरोध नहीं कहा, समझा। देखो छद्मस्थों के ध्यान किसको कहना, हम कहते ना एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम, परंतु वो अंतर्मूर्ता ऐसे भी शब्द है आगे। तो अंतर्मूर्त तक किसी एक ध्येय को जानते रहना, या क्या कहा, एक वस्तु में अंतर्मूर्त काल तक चिंता का अवस्थान होना, उसको छद्मस्थों का ध्यान कहा है। हाँ, छद्मस्थ बारहवें तक है ना। हाँ, तो बारहवें तक, बारहवें के अंतिम समय तक की बात है। अब वो धर्म है कि शुक्ल, इसकी उसका डिफ्रेंशिएट किए बिना ये बात है। छद्मस्थों का ध्यान क्या होगा, एक वस्तु में अंतर्मूर्त तक टिकना। और जिनेंद्र भगवान का ध्यान कैसा होगा फिर, वो तो सभी वस्तुएं उनके ज्ञान में है, तो एक वस्तु में टिकना ये परिभाषा हम वहां नहीं बना सकते। तो उनके लिए ध्यान की परिभाषा क्या होगी, तो कहते योग का निरोध। सयोगी है ना, तो सयोगी का जब काल खत्म होने को आएगा, तो ये योग को सूक्ष्म किया जाता है, उसका निरोध किया जाता है, तो उसको कहते हैं योग निरोध। जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी, जिसकी अभी बात नहीं की है, परंतु यह उसकी किसको कहना, उनमें ध्यान किसको कहना, तो वहां 14 में योग ही नहीं, उसका निरोध क्या कहेंगे। योग का निरोध जो किया है, ये जो सूक्ष्म किया है, उसको सूक्ष्म प्रतिपाती करेंगे। पहले मनोवचन काय के अवलंबन से आत्म प्रदेशों का स्पंदन होता था, वो सूक्ष्म किया जाएगा, उसको सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती कहेंगे, और फिर उसका अभाव हो जाएगा, हाँ, तो उसको भी हम कहेंगे। तो उसकी बात तो अभी आएगी डिटेल में। देखो तो प्रश्न ऐसा भी होता है कि जिनेंद्र भगवान किसी एक वस्तु को नहीं जानते, और हमने ध्यान किसको कहे, एक ही वस्तु को जानते रहना, उसको ध्यान कहा, तो उनके ध्यान क्यों कहा जाता है। अन्य शास्त्रों की बात है, अभी यहां तो उन्होंने योग निरोध को बता ही दिया। तो ध्यान का जो फल है, ध्यान का फल क्या होता है, कर्मों की निर्जरा होना। वो कर्मों की निर्जरा यहां चल रही है, इसके जिनेंद्र भगवान के भी ध्यान कहने में आता है, ऐसा भी वर्णन आता है वहां पर। परंतु वो ध्यान नहीं है, वो ध्यान का फल है। केवल ज्ञान होना ध्यान का फल हो गया, तो सभी वस्तुएं एक साथ जान रहे, और हमने ध्यान की परिभाषा क्या की थी, एक वस्तु को जानते रहना अंतर्मूर्त तक। इसलिए जिनेंद्र भगवान में ध्यान की परिभाषा क्या होगी, योग का निरोध। अब आगे 52 नंबर। अंतो मुहूर्त परदो चिंता झाणंतरम वहो जाही सुचिरं पिहो ज बहुवत सुसंक में झाण संतानो। अंतर्मूर्त के बाद चिंतांतर या ध्यानांतर होता है। ये ध्यान के विषय बदलेंगे, विषय के भेद से अन्य ध्यान हम कहेंगे उसको। ये चिंतांतर यानी उपयोग अन्य वस्तु में लगेगा, तो अंतर्मूर्त के लिए ही होगा, उसके बाद ध्यानांतर होगा। जैसे हम कहते हैं ना, योग से योगांतर होता है, हम जो मन वचन काय के योग पलटते रहते हैं, वैसे वहां क्या, वो तो ध्यान कर रहा है, परंतु उसके विषय बदलते रहते, उसको हम कहेंगे ध्यानांतर। अर्थ से अर्थांतर वो पृथक्त्व में लिया था, पृथक्त्व वितर्क में। अन्य भी धर्म ध्यान के तो उसमें शुक्ल ध्यान में भी होता है, तो इसमें तो कितना पलटता होगा ना, धर्म ध्यान की भी बात है यहाँ पर। क्या कहते हैं, अंतर्मूर्त के बाद चिंतांतर या ध्यानांतर होता है या चिरकाल तक बहुत पदार्थों का संक्रम होने पर भी एक ही ध्यान संतान होती है। ये ध्यान यानी वो चेंज हो ना, पदार्थ बदलते रहे और हम कहेंगे वो ध्यान ही हो रहा है, परंतु उसमें क्या कहे, ध्यान संतान कहेंगे। ये जैसे नाचारी की टीका में हमने प्रवचन सार में देखा था, ध्यान ध्यान संतान और दो नाम थे। चार नाम आई थी वहां पर, हाँ, अलग अलग विषय पर। ध्यान ध्यान संतान ध्यान, जैसे ना चार ने चार बातें बताई थी ध्यान के बारे में, प्रवचन सार में आई थी बात, कल देखेंगे मैं, लिखा होगा उसमें। ये 52 हो गया। आगे, इस धर्म ध्यान में पीत क्या हुआ, इस धर्म ध्यान में पीत पद्म और शुक्ल ये तीन ही लेशाएं होती हैं, क्योंकि कषायों के मंद मंदतर और मंदतम होने पर धर्म ध्यान की प्राप्ति संभव है। इस विषय में गाथा ये 53 नंबर के, होंती कम विशुद्धाओ लेसाओ पीय पौम सुखाओ धम्म क्षाणो अगय सतिव मंदादि भेयाओ। धर्म ध्यान को प्राप्त हुए जीव के तीव्र मंद आदि भेदों को लिए हुए यानी तीव्र मंद आदि भेदों सहित क्रम से विशुद्धि को प्राप्त हुई पीत पद्म और शुक्ल लेशाएं होती है। क्रम से विशुद्धि को प्राप्त यानी कम विशुद्ध है तो उसको पीत कहेंगे, और विशुद्धि बढ़ गई पद्म हो जाएगी, विशुद्धि और बढ़ गई तो शुक्ल लेशा हो जाएगी। ये लेशा की बात है, शुक्ल लेशा कहा, शुक्ल ध्यान नहीं कहा। शंका, यह धर्म ध्यान में परिणमता है यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, जिन और साधु के गुणों की प्रशंसा करना, विनय करना, दान संपत्ति से जाना जाता है और दान संपत्ति से जाना जाता है। इस विषय में गाथाएं हैं। 54 नंबर, आगम उदेशाणा निसग्गदोजं जिनप्पणीयाणं भावाणं सद्दहनं धम्मच्छाण सतन लिंगम। धर्म ध्यान का लिंग यानी लक्षण क्या है उसको बताते हैं। देखो, आगम उपदेश और जिनाज्ञा के अनुसार निसर्ग से जो जिन भगवान के द्वारा कहे गए पदार्थों का श्रद्धान होता है वह धर्म ध्यान का लिंग है, यानी सम्यक दर्शन ये उसका लिंग है। ये जिसके श्रद्धा नहीं है तो इन बातों पर विचार करना उसको वो धर्म ध्यान भी नहीं कहा। अब 55 नंबर, पहले पूछा था कि ये धर्म ध्यान है ये कौन से लक्षण से जाना जाता है, कौन से प्रमाण से जाना जाता है। यानी जिनेंद्र भगवान ने कथित पदार्थों का श्रद्धान होता है वह धर्म ध्यान का लिंग यानी लक्षण है ये बताया। अब आगे और बताते हैं। 55 नंबर, जिन साहु गुण कीर्तन प्रशंसना विनय दान संपन्ना सुदशील संयम रदा धम्म छाणे मुणे यौवा। मुणे यौवा हुआ है, मुणे यौवा ज्ञातव्य है। जिन और साधु के गुणों का कीर्तन करना, जिन्हें जिनेन्द्र भगवान के और साधु के गुणों का कीर्तन करना, प्रशंसा करना, विनय करना, दान संपन्नता, श्रुत शील और संयम में रत होना, श्रुत में लीन होने ने स्वाध्याय करके उस पर बारंबार विचार करना, ये बातें धर्म ध्यान में होती है ऐसा जानना चाहिए। आगे इस धर्म ध्यान का क्या फल है, क्या फायदा पूछते ना समाधान, अक्षपक जीवों को देव पर्याय संबंधी विपुल सुख मिलना उसका फल है। क्या कहा अक्षपक क्यों डाला, अरे जो क्षपक है वो तो मोक्ष ही प्राप्त करेंगे तो जो अक्षपक है, अभी भले मान लेते उन्होंने पर्याय बांध लिया आगे का, वो तो अक्षपक जीवों को देव पर्याय संबंधी विपुल सुख मिलना उसका फल है, और गुण श्रेणी में कर्मों की निर्जरा होना भी उसका फल है। तो खाली चिंतवन से होगा नहीं, वो सम्य दृष्टि है, मूल में मुनि है, तो उनकी उतनी कषायों का अभाव है, वितरागता है ना, तो उसके फलस्वरूप वहाँ। और ये ध्यान फिर क्यों करना, तो उससे उसकी विशुद्धि बढ़ती है। हाँ देखो देखो, गुण श्रेणी जो है और वो श्रेणी का चढ़ना, वो दो बातें अलग है। जो उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी है वो अलग बात है, और गुणश, हाँ नहीं नहीं आपका प्रश्न है, गुण श्रेणी भी श्रेणी में ही होती होगी, नहीं सुनो अभी, तो गुण श्रेणी किसको कहते पहले ये हम कहेंगे। गुण श्रेणी यानी गुणित प्रमाण में पंक्तियों की रचना, कर्मों की जो निर्जरा होती है वो तो अपकर्षण के द्वारा उदयावली में उसके ऊपर दिया जाता है, गुण श्रेणी होती है। तो सबसे पहले कब होती है, मिथ्यात्व अवस्था में होती है करण लब्धि में नहीं नहीं प्रायोगिक लब्धि नहीं, करण लब्धि में, करण लब्धि में होती है। हाँ वो असंख्यात गुणा वाले 11 स्थान है, तो उसमें तो चौथे वाले को भी वो यथा योग्य होता है। अब फिर कभी होती है, पांचवे से तो लगातार होती है, चौथे वाले को तो कभी कभी होगी जब विशुद्धि बहुत बढ़ेगी, जब तीन करण परिणाम होगी, करण परिणामों में होगा। परंतु अन्य जो है पांचवे गुणस्थान से लेकर ऊपर के गुणस्थानों में गुणश्रेणी हर समय चलती रहती है, गुणश्रेणी निर्जरा भी सभी कर्मों में होती है वो, तो उसको गुणश्रेणी कहते हैं। अभी पांचवे की जितनी होती है छठे की उससे ज़्यादा हो, यानी उसका निर्जरा ज़्यादा होगी, और गुणश्रेणी का जो आयाम है लंबाई वो छोटी होती जाएगी, कम निषेकों में अधिक परमाणु बढ़ जाएंगे और निकल जाएंगे ज़्यादा, तो उनकी निर्जरा बढ़ेगी। क्योंकि अभी हमने क्या, धर्म ध्यान कब से होता है, चौथे से लेकर आगे होते हैं, और उसका फल क्या है, गुणश्रेणी निर्जरा होती है। देखो सम्यक दर्शन हुआ है ना, अपने आत्मा का अनुभव कर लिया, अपने आत्मा को जान लिया, इससे भिन्न है ये जान लिया, अभी इसके आगे का क्या है, ये एकाग्रता यानी ध्यान ही बात है। तो इन चीजों पर वो विचार करते रहेगा, उसी में ही बारंबार उपयोग उसका चलेगा, तो उस काल में भी उसकी वो निर्जरा चल रही है, क्योंकि उसकी विशुद्धि बढ़ती है, कषाय मंद होते हैं। कर्णानियोग कभी शुद्धोपयोग शुभोपयोग की बात नहीं करता, वो विशुद्धि कितनी है, संकलेश कितनी है, उसकी माप करेगा। अक्षपक जीवों के लिए क्या होता है, देव पर्याय संबंधी यानी वो पुण्य बनता है, ये बात कहना चाहते हैं, और गुणश्रेणी निर्जरा बहुत होती है। आगे क्या, क्षपक जीवों के तो असंख्यात गुणश्रेणी रूप से कर्म प्रदेशों की निर्जरा होना, अभी वहां तो गुणश्रेणी कहा, यहां असंख्यात गुणश्रेणी रूप से निर्जरा होना, और शुभ कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग का होना उसका फल है। ये जो धर्म ध्यान में क्या होता है, शुभ कर्मों का अनुभाग, जो बंधा बंधने वाला है वो तो उत्कृष्ट बनता ही बनता है, परंतु जो सत्ता में पड़े हैं उसका भी अनुभाग बढ़ता चला जाता है, विशुद्धि बढ़ती है तो शुभ कर्मों का अनुभाग भी अनंत गुना बढ़ता है, और अशुभ कर्मों का अनंत गुना घटता है। अतएव जो धर्म से अनपेत है वह धर्म ध्यान है, यह बात सिद्ध होती है। ये अनपेत का अर्थ क्या? धर्म से अनपेत युक्त लिखा है वह इस विषय में गाथाएं 56 नंबर पढ़ेंगे। होंति सुहासव संवर निज राम रसुहाय व्यूलायम झाणवर सफलायम सुहाणु बंधी निधमस। जो अभी हमने देखा अर्थ वही बताते हैं हम। देखो उत्कृष्ट धर्म ध्यान के सुहासव यानी शुभ आश्रव संवर, हम क्या कहते हैं, क्या होता है संवर निर्जर होती है, परंतु आश्रव है ना, पर कौन सा आश्रव होगा? शुभाश्रव भी चल रहा है, शुभाश्रव संवर निर्जरा और देवों का सुख, ये शुभानुबंधी विपुल फल होते हैं। वो चाहता नहीं है शुभानुबंध, परंतु वो धर्म ध्यान में ही उसका उपयोग कहाँ चलेगा, बारंबार वो साध्या में उसके विषयों में उसका मन लगेगा। 57 नंबर। जहवा घन संघाया खणेन पवना हया विलिच्छन्ती झाण पवनो वहया तह कम्म घना विलिच्छन्ती। कम्म घना विलिच्छन्ती यानी कर्म रूपी मेघ किससे? झाण पवनो वहया, ध्यान रूपी पवन से। नीचे हम पढ़ेंगे देखो, अथवा जैसे मेघ पटल पवन से ताड़ित होकर, ताड़ित होकर यानी पवन से वो मार होता है, पवन का उसमें मार पड़ता है तो क्या होता है, क्षण मात्र में विलीन हो जाते हैं। बहुत हम देखते हैं ना, बादल घने आए और बहुत जोर से पवन चलता है तो ये कहाँ से कहाँ विलीन हो जाते हैं, वैसे ही ध्यान रूपी पवन से उपहत होकर कर्म मेघ भी विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार धर्म ध्यान का कथन समाप्त हुआ, अब शुक्ल ध्यान का कथन करते। ये बहुत अच्छा कथन आया है। यथा पहले में पहले शंका, इसे शुक्लपना किस कारण से प्राप्त है, उसे शुक्ल क्यों कहेंगे? तो कहते समाधान, कषाय मल का अभाव होने से। बहुत अच्छा, ये ध्यान का विषय इसमें से लेना चाहिए एक बार। कितना बहुत कितने ये सब ध्यान का बहुत अच्छा वर्णन, इतना डिटेल हमने तो भावदीपिका में वगैरह में पढ़ा था, मगर ये बहुत ही अच्छा, बहुत गजब का है। हाँ हाँ, गाथा बहुत अच्छी है। देखो अभी ये शुक्ल ध्यान का वर्णन चलेगा, वह चार प्रकार का है। ये तो हमने प्रकार और ये बहुत याद भी किए ना। हाँ, पृथक्त्व वितर्क विचार ये पहला हुआ, विदीर्घ ही है, एकत्व वितर्क अविचार, तीसरा है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और चौथा है समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती। वही है नहीं, दोनों सूक्ष्म क्रिया और समुच्छिन्न कहो या विपरीत क्रिया कहो, एक ही बात। उनमें से प्रथम शुक्ल ध्यान का लक्षण कहते हैं, यानी वो पृथक्त्व वितर्क विचार। पृथक्त्व का अर्थ भेद है, वितर्क का अर्थ द्वादशांग श्रुत है, और विचार है, विचार नहीं कहा, विचार, वो दूसरी ही लगाई ना, विचार। तो विचार का मतलब क्या है? विचार से मतलब अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति है, यानी पलटना, यानी अर्थ से अर्थांतर, यानी एक द्रव्य पर ध्यान चल रहा तो उसको पलट जाना, उसका विषय। व्यंजन यानी शब्द, और योग यानी मनोयोग, वचन योग और काय योग। किसी एक शब्द पर, किसी एक पद पर विचार कर रहे हैं तो वो पलट जाना। अर्थ यानी द्रव्य, हम कहें ना पदार्थ। व्यंजन यानी विशिष्ट शब्द, ये शब्द से शब्दांतर ऐसा भी कहते हैं, और योग तो पता ही हमें, उसकी संक्रांति यानी पलटना, एक योग से अन्य योग में चला जाना, उसको वो योग की संक्रांति कहेंगे। तो देखो पृथक्त्व यानी भेद, वितर्क का अर्थ होता है द्वादशांग श्रुत, और उसमें पलटना, तो उस श्रुत में क्या पलटेगा, तो श्रुत में जो उपदेश दिया है तो उस एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का विचार चलेगा, या फिर एक शब्द से दूसरे शब्द पर, या योग का पलटना। पृथक्त्व अर्थात भेद रूप से, वितर्क अर्थात श्रुत का, विचार अर्थात संक्रांति, यानी भेद रूप से श्रुत का संक्रांति जिस ध्यान में होती है वह पृथक्त्व वितर्क वितर्क विचार नाम का ध्यान है। यानी श्रुत संबंधी जो संक्रांति होगी, इस विषय में गाथाएं। दौवाई मणे गाई तिही विजोगे हिजेन जायंती वसंत मोहनिज्जा तेन पुदत्तम तितम भणिदम। यतः उपशांत मोह जीव अनेक द्रव्यों का तीनों ही योगों के आलंबन से ध्यान करते हैं, इसलिए उसे पृथक्त्व ऐसा कहा है। यतः आगे पढ़ना है ना 59। जम्मा सुदम विदक्कम जम्मा पूवगय अत्थ कुसुलोय झायदि झाणम एदम सविदक्कम तेन तम झाणम। यतः वितर्क का अर्थ श्रुत है, और यतः यत है ना क्योंकि, पूर्वगत अर्थ में कुशल साधु ही इस ध्यान को ध्याते हैं। पूर्वगत है ने पूर्व को जानने वाले, पूर्वगत अर्थ में कुशल है ने जो हम कहते हैं ना 10 पूर्वीय 9 पूर्वीय ऐसे जो कुछ है 14 पूर्व को जानने वाले इस ध्यान को ध्याते हैं, इसलिए उस ध्यान को सवितर्क कहा है। आगे 60 नंबर। अत्थान वंजनाणय जोगाणय संकमोह विचारो तस्सत भावेण तगम सुत्तम उत्तम सविचारम। सुत्ते है क्या, सुत्तम है, सुत्ते है क्या, हाँ सुत्ते, वो मुझे दिख नहीं रहा। सूत्र में बराबर अर्थ व्यंजन और योगों का संक्रम विचार है, जो ऐसे संक्रम से युक्त होता है उसे सूत्र में, हाँ यहाँ लिखा ना सूत्र में, सविचार कहा है, इसका भावार्थ कहते हैं सुत्ते। उसके अर्थ हमने सूत्र में देखा ना, सुत्ते ने वो सप्तमी विभक्ति है, इसका भावार्थ कहते हैं। 14, 10 और 9 पूर्वों का धारी, अब ये ध्यान किसको होगा उसकी बात चल रही है, तो पूर्व के धारी प्रशस्त 3 सहनन वाला, 11वें की बात है, तीनों उत्कृष्ट सहनन वाले को 11वां हो सकता है। कषाय कलंक से पार को प्राप्त हुआ, वीतराग छद्मस्थ है नहीं है, और 3 योगों में से किसी एक योग में विद्यमान ऐसे उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्थ जीव बहुत नए रूपी वन में लीन हुए ऐसे एक द्रव्य या गुण पर्याय को श्रुत रूपी रवि किरण के प्रकाश के बल से ध्याता है। ओहो, इस प्रकार उसी पदार्थ को अंतर्मूर्त काल तक ध्याता है। इसके बाद अर्थांतर पर नियम से संक्रमित होता है, अर्थांतर पर यानी अन्य द्रव्य पर उसका वो ध्यान केंद्रित होता है, अथवा उसी अर्थ के गुण या पर्याय पर संक्रमित होता है। या तो द्रव्य को दूसरे द्रव्य का चिंतन करेगा, या उसी द्रव्य के अन्य गुण या अन्य पर्यायों का चिंतन होगा। और पूर्व योग से, मेरे ख्याल से व्यंजन यानी वहां पर्याय लेना क्या, व्यंजन संक्रांति कहा, या अर्थ में ही गुण और पर्याय लिया, अर्थात पूर्व योग से स्यात योगांतर पर संक्रमित होता है। इस तरह एक अर्थ अर्थांतर गुण गुणांतर पर्याय पर्यायांतर को नीचे ऊपर स्थापित करके फिर तीन योगों को एक पंक्ति में स्थापित करके द्विसंयोग और त्रिसंयोग की अपेक्षा यहाँ पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान के 42 भंग उत्पन्न करना चाहिए। कितने हुए यहाँ पर? नीचे तो तीन हुए और ऊपर छः, हाँ तो एक एक में छः छः और फिर उसके द्विसंयोगी किया, यानी अर्थ के साथ गुण भी हो सकता है या पर्याय भी हो सकता है, इस तरह से वो द्विसंयोग। हाँ, इस प्रकार अंतर्मुहूर्त काल तक शुक्ल लेशा वाला उपशांत कषाय जीव छह द्रव्य और नौ पदार्थ विषयक पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान को अंतर्मुहूर्त काल तक ध्याता है। अर्थ से अर्थांतर का संक्रमण होने पर भी ध्यान का विनाश नहीं होता, क्योंकि इससे चिंतांतर में गमन नहीं होता। इस प्रकार इस ध्यान के फलस्वरूप संवर निर्जरा और अमर सुख प्राप्त होता है, क्योंकि इससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। मुक्ति की प्राप्ति के लिए वो एकत्व वाला होगा। हमने कहा ना, ग्यारहवें वाले और बारहवें वाले में समान वितरकता है, तो उसको तो तेरहवा प्राप्त होता है, इसको क्यों नहीं है? ये ध्यान अलग अलग है, उनके वितरकता समान है। हाँ, ग्यारहवें में लिया व्यंजनकार, तो यहाँ उसके पर्याय गुण और पर्याय को लिया है। लिखो मत कुछ उसमें, पर यहाँ तो उसके पर्याय की अपेक्षा उसको व्यंजन कहा दिखता है, परंतु मैंने कहीं शब्द ऐसा भी पढ़ा था व्यंजन का अर्थ। इस प्रकार पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान का कथन समाप्त हुआ। ये शुक्ल ध्यान में से एक ध्यान हुआ यहाँ पर। अब द्वितीय शुक्ल ध्यान का कथन करते हैं। एकत्व वितर्क और अविचार है ना, अभी उसका अर्थ पहले कहेंगे। एक का भाव एकत्व है, वितर्क द्वादशांग को कहते हैं और अविचार का अर्थ असंक्रांति है। अभेद रूप से वितर्क संबंधी अर्थ व्यंजन और योगों का अविचार अर्थात असंक्रांति जिस ध्यान में होती है वह एकत्व वितर्क अविचार ध्यान है, यानी उसमें कुछ पलटना नहीं होता है, बस अभेद रूप से वहां ध्यान चलता है। इस विषय में गाथाएं 61 नंबर। जेने गमेव दौवम जोगो नैकेन अन्नदरयेण हीण कसाओ झायई तेने यत्तम तगम भणिदम। यतः क्षीण कषाय जीव एक ही द्रव्य का किसी एक योग के द्वारा ध्यान करता है, इसलिए उस ध्यान को एकत्व कहा है। 62 नंबर। जम्मा सुदम विदक्कम जम्मा पूव गय अथ कुसुलोय झायदि झाणम एदम सविदक्कम तेन तज्झाणम। यतः वितर्क का अर्थ श्रुत है और जिसलिए पूर्वगत अर्थ में कुशल साधु इस ध्यान को ध्याता है, इसलिए इस ध्यान को सवितर्क कहा है। 63 नंबर। अत्थान वंजनानय जोगाणय संकमोहु विचारो तस्स भावेन तगम झाणम विचारमिदि उत्तम। अर्थ व्यंजन और योगों के संक्रम का नाम विचार है, यतः उस विचार के अभाव से यह ध्यान होता है इसलिए इसे अविचार कहा है। ये पहले में पहले बताया, एकत्व क्यों कहा, वितर्क क्यों कहा या सवितर्क क्यों कहा और अविचार क्यों कहा, ये तीनों की बात बताएं। इसका यह आशय है, जिसके शुक्ल लेशा है, जो निसर्ग से बलशाली है, निसर्ग से शूर है, वज्र ऋषभ वज्र नाराज सहनन का धारी है, किसी एक संस्थान वाला है। संस्थान कोई होने में कोई रुकावट नहीं, छह संस्थान में से कोई भी संस्थान हो सकता है। सहनन के लिए वज्र ऋषभ नाराज सहनन का नियम है छह। हाँ, वो क्योंकि हमने देखा था ना, तेरहवे गुणस्थान के उदय की विच्छित्य में हमने छह संस्थान देखे थे, तो छह संस्थान में कोई भी, क्योंकि शरीर के आकार से कुछ उसमें लेना देना नहीं, सहनन का नियम है, संस्थान का नहीं है। तीर्थंकरों के तो समचत्र से संस्थान ही होगा। हाँ, 14 पूर्वधारी है, 10 पूर्वधारी है या 9 पूर्वधारी है। देखो इतना तो ज्ञान का क्षोभम लिया, यहाँ पर पूर्व के जानने वाले हैं, क्षायिक समय दृष्टि है, क्योंकि उसके बिना क्षपक श्रेणी चढ़ ही नहीं। और जिसने समस्त कषाय वर्ग का क्षय कर दिया है, ऐसा क्षीण कषाय जीव, अभी क्षीण कषाय का पहले वर्णन किया, 9 पदार्थों में से किसी एक पदार्थ का द्रव्य गुण और पर्याय के भेद से ध्यान करता है। इस प्रकार किसी एक योग और एक शब्द के आलंबन से, शब्द आया देखो यहाँ, हाँ, वहां एक द्रव्य गुण या पर्याय में मेरु पर्वत के समान निश्चल भाव से अवस्थित चित्त वाले कहते, एक द्रव्य गुण और पर्याय में मेरु पर्वत के समान निश्चल भाव से अवस्थित चित्त वाले असंख्यात गुणश्रेणी क्रम से कर्मस्कंधों को गलाने वाले अनंत गुणहीन श्रेणी क्रम से कर्मों के अनुभाग को शोषित करने वाले, क्या कहते हैं कर्मों का अनुभाग जो है, अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग, वो अनंत गुणहीन हो रहा है। ये वाक्य पूरा करते हैं। और कर्मों की स्थितियों को एक योग तथा एक शब्द के आलंबन से प्राप्त हुए ध्यान के बल से घात करने वाले उस जीव का अंतर्मूर्त काल जाता है। कल दोबारा पढ़ेंगे इसको, इसका आशय से लेकर, हाँ, 79 पृष्ठ से जाव।